ओम शांति। आज भट्टी का दूसरा दिन है। सुबह से आप सभी भट्टी के अनेक विषयों पर सुन रहे हैं, अनुभव युक्त बातें। थक तो नहीं गए? नहीं थके? नहीं ना थके? ऐसा नहीं ना दिन का अंतिम क्लास है तो अभी थक गए, ऐसा तो नहीं ना। फ्रेश है ना? और ये सुनते सुनते फ्रेश हो गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना। सुनते सुनते और ये फ्रेशनेस आ गई है। तो अभी हम सबके बीच में हैं, आप सब परिचित हैं, हमारे आदरणीय भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर बनारसी भाई। हम उनका एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। स्वागत है बनारसी भाई। आप आपकी जो जीवन है वो विषय से मिलती जुलती है। जो बाबा कहते हैं ना समर्पणमय जीवन, तो आपकी अपनी जीवन ही ऐसी जीवन है। और जो बाबा भी कहते हैं या जो बाबा हम सब बच्चों को तपस्वी मूर्त कहते हैं, राज ऋषि कहते हैं, तो जैसे स्व पर राज्य करना और तपस्या करना और सादगी, तो जीवन में सादगी ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके जीवन में, जो मैं अनुभव करती हूँ, मैं वो सुना रही हूँ। और दूसरी बात कि हम सभी सेवा करते हैं, अनेक आत्माएं हैं जो यज्ञ में आज की तारीख में हजारों लाखों आत्माएं हैं जो सेवा करते हैं, लेकिन कुछ एक आत्माएं ऐसी हैं जो दिल की गहराई से सेवा करती हैं, तो आप उनमें से एक हैं, दिल की गहराई से सेवा करते हैं। कभी भी मैंने उनको ऊपरी रूप से करते हुए नहीं देखा, मतलब मेरा अनुभव नहीं है वैसा। भले यूं साथ में कभी कोई अभियान में गए हो या कोई मेले में गए हो या ऐसे कोई कॉन्फ्रेंस में, उस रीति से भले यूं हेल्थ कॉन्फ्रेंस में कहीं होंगे, लेकिन ऐसा उस रीति से नहीं किया है, लेकिन जो वाइब्रेशंस मैं कैच करती हूं मैं वो सुना रही हूं। तो ये आपकी बहुत अच्छी विशेषताएं जो बाबा ने भरी हैं, जो मैं समझती हूं नेचुरल हैं। हर आत्मा में कुछ विशेषताएं नेचुरल होती हैं और कुछ वो आत्मा अभ्यास करती है, तो ये मुझे आपकी विशेषताएं सदा आकर्षित करती हैं जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाई हैं। और ऐसे ही बाबा अपने ऐसी बच्चों को चुन करके उनसे अनेक बड़ी सेवाएं करा लेते हैं। वैसे आप बिहार से हैं, आपने होम्योपैथी में ग्रेजुएशन किया, 1973 में आप ग्रेजुएट हुए और आपने अपना ये कार्य पूरा करके, अपनी पढ़ाई पूरी करके, आपकी दिल थी बाबा के कार्य में समर्पित होने की और आप बाबा के कार्य में समर्पित हुए। जब से मैंने देखा है पांडव भवन की, जो अभी भी छोटी सी डिस्पेंसरी है, आप लोग अभी भी आते जाते चलते देखते होंगे, सबसे पहले हमने डॉक्टर बनारसी भाई को वहां बैठे देखा है। और सदा सबकी सेवा में तत्पर, और आज की तारीख में भी हम देखते हैं, चाहे वो हमारी बड़ी दादियां हों, चाहे वो हमारे वरिष्ठ भाई हों, चाहे वो अन्य कोई बहनें हों, सेंटर्स की बड़ी छोटी बहनें हों, सबके लिए सदा वो तत्पर रहते हैं। रात को भी फोन करो तो वो अरेंजमेंट करेंगे या खुद भी आ जाएंगे। और बड़ों के साथ हर जगह कहीं भी अगर कोई तकलीफ है, शरीर की तकलीफ है और जाना है, डॉक्टर से मिलना है, उनकी ट्रीटमेंट करानी है, तो दिन रात उनकी सेवा में, मैंने कहा ना दिल से जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़े रहते हैं और उनकी सेवा में रहते हैं। और मतलब अगर कोई दादी बॉम्बे में आई है तो बनारसी भाई तो होंगे ही ना, अगर वो चेकअप के लिए वगैरह आते हैं या अपनी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो सदा ही जैसे एक पैर पर खड़ा होता है ना कोई व्यक्ति, कभी भी ना कहना, तो इनकी बहुत बड़ी अच्छी विशेषता है। बाकी अनेक सेवाएं, 73 से आप आज लगा लो कितने साल हो गए हैं, तब से लेकर के अनेक सेवाएं आपने की हैं, विशेषकर मेडिकल विंग में आप अनेक प्रकार की सेवाएं देते रहे। मेडिकल विंग ने बहुत प्रकार की सेवाएं की हैं, कई प्रकार के अभियान निकाले और कई प्रकार की मेडिकल विंग ने सेवाएं शुरू भी की है ना। 86 में शायद मैं समझती हूँ कैंपेन्स निकले थे, 5 कैंपेन निकले थे 5 जगहों से, जो दिल्ली में इकट्ठे हुए थे, फिर दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम हुआ था। और न केवल कैंपेन्स, लेकिन उसके अलावा हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस में भी एमडीज डॉक्टर की अलग, फिर उसके बाद MBBS की अलग, फिर होम्योपैथ की, फिर मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की, इस तरह की कई कॉन्फ्रेंसेज माउंट आबू में ऑर्गेनाइज होती रही। और मैं ये भी समझती हूँ, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस तो 83 में हुई थी हमारी पहली ओम शांति भवन में, लेकिन मेडिकल विंग की जो कॉन्फ्रेंस, हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई 86 में, पहली कॉन्फ्रेंस जिसमें मतलब बॉम्बे से ही कितनी बसेस, डॉक्टर दिनों में डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती थी, तो ये सब कार्यक्रमों को यहाँ माउंट आबू में आयोजन करने में, उनको ऑर्गेनाइज करने में, उनको कंडक्ट करने में आपका बहुत बहुत बड़ा उसमें सहयोग और हाथ रहा है। और ऐसे कैसे दिन दुगुनी रात चौगुनी मेडिकल विंग की सेवाएं बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, मैं समझती हूँ शायद 25 वर्ष तो हो चुके हैं। तो अनेक सेवाएं देने में आप रहे हैं सदाई, और उसके अलावा जो मेडिकल विंग है उसके आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, जो हेल्थ केयर सेंटर है शांति वन में, और जो हॉस्पिटल है हेल्दी एवर हेल्दी हॉस्पिटल उसके आप डायरेक्टर हैं, और अपना जो ये बड़ा ऊपर हॉस्पिटल है JW ऑटोमल हॉस्पिटल जो है उसके आप ट्रेजरर हैं। तो इस प्रकार अनेक सेवाएं आपने दी, और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में की कॉन्फ्रेंस करने में भी आपने, मतलब आप पायनियर रहे, आपने प्रारंभ करवाई, और आपको एक विशेष अवार्ड कांग्रेस ऑफ होम्योपैथ की तरफ से मिला है 2001 में, आपको ऑनर किया गया, उन्होंने फेलिसिटेट किया था। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा वाले हमारे डॉक्टर बनारसी भाई ना, आज हम सबको समर्पण मयता से संपन्नता इस विषय पर, अपने अनुभवों के आधार पर इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, जो हमारे जीवन की अलौकिकता को, जीवन की आध्यात्मिकता को, उस ग्राफ को आगे बढ़ाने में, ऊपर ले जाने में और काम आएगा। आपका भी आध्यात्मिक ग्राफ सदा बढ़ता रहता है, वो मुझे भी अनुभव होता है। तो मैं निवेदन करती हूँ हमारे डॉक्टर बनारसी भाई आपको इस विषय पर स्पष्ट कर। आदरणीय भ्राता PK राजयोगी बनारसी भाई।
थैंक यू देवी। ओम शांति। कितने लक्की आप सब हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि कहां तपस्या कर रहे हो। ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते हैं, जहां भगवान नहीं है, अन्य भगवान गया है, वहां जाके तपस्या करते हैं कि शायद भगवान यहां एकांत शांत है, वहां आ जाएगा, वहां जल्दी मिलेगा। लेकिन आप महान आत्माएं वहां तपस्या कर रहे हो जहां भगवान ने तपस्या किया है, करवाया है, उसके कदम पड़े हैं, जहां हमारे पूर्वजों ने तपस्या किया है। मम्मा कहां तपस्या किया? यही किया ना। दादी दीदी हमारे सारे पूर्वज, एडवांस पार्टी के हमारा सारा ब्राह्मण परिवार कहां किया? यहां किया। यहां का वाइब्रेशन इतना अच्छा है कि जो विजिटर आते हैं मधुबन देखने के लिए, पांडवों हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारी का कैसा है, गेट के अंदर पांव रखते उनको एक अजीब महसूसता होती है, एक पावरफुल वातावरण की महसूसता होती है। ऐसे वातावरण में आप महान आत्माएं 2 दिन से तपस्या कर रहे हैं, 2 दिन और करेंगे, कितना बड़ा लक है। लक कैसे मिलता है, भाग्य कैसे मिलता है? कभी कुछ दिया होगा, कभी कुछ समर्पण किया होगा तो भाग्य मिलता है। समर्पणता से भाग्य मिलता है। सबसे भाग्यशाली कौन आत्मा इस सृष्टि पर हुए? ब्रह्मा बाबा। मम्मा, जिन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया। बाबा ने थोड़ा सा रखा क्या? नहीं, परिवार है, बच्चे हैं, संबंधी हैं, थोड़ा सा रख ले। लाखों रुपया मिला उसमें से 50,000 रख ले, 25,000 रख ले, 10,000 रख ले, 5,000 रख ले। बाबा रखा, टच तक भी नहीं किया, आया स्वाहा कर दिया। 11 माताओं बहनों की कमिटी बना करके स्वाहा कर दिया। दुनिया में कहां रिकॉर्ड नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो संस्था का हेड मालिक नहीं बने और औरों को मालिक बना दे। सोचो कितनी बड़ी उनकी त्याग होगी। स्वयं मालिक नहीं बना, उनके रिलेटिव थे हमारी निमो शांता दादी, कितनी बड़ी दादी, क्या उनकी पर्सनालिटी, सरस्वती देखने में लगती थी, सफेद बाल सरस्वती के समान। उनको भी मालिक नहीं बनाया, चलो खुद नहीं रहा तो बेटी को मालिक बना दे, नहीं। 11 माताओं बहनों की कमिटी बना करके व्हील कर दिया। जरा भी अपनापन नहीं रहा। ऐसा हो कि चलो व्हील कर दिया लेकिन मालिक मैं हूं, मेरी ही चलेगी, नहीं। बाबा ने सब कुछ बना था, इंद्रप्रस्थ बाद में बना है, ट्रेनिंग क्लास ये और ये सब, हिस्ट्री हॉल, हिस्ट्री हॉल के बाजू में जो रूम बने थे, ट्रेनिंग क्लास नीचे नीचे बना था। बाबा का छोटा सा जो कमरा था, तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर होने के बाद, दो रूम तोड़ करके इतना बड़ा बनाया गया है जो आप लोग आज देख रहे हैं, छोटा सा था, खपड़े का मकान, आज भी है वही, पोर्च बनाने से लगता है किला जैसा लेकिन वही है। बारिश बहुत होती थी, बारिश होता था, बाबा छाता लेकर के बैठ के तपस्या करता था चारपाई पर, क्योंकि बारिश हो रही है, टपक रहा है पानी, आ रहा है चारपाई पर पड़ रहा है, कैसे नींद आएगी। दादियां बच्चे कहते थे बाबा आप नए मकान में आ जाइए, तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, अभी तो रहने का स्थान बन गया ना, आप नए मकान में आइए। बाबा का त्याग समर्पणता नहीं, बाबा पुराने मकान में रहेगा, नए मकान बच्चों के लिए। अरे जो शिव बाबा है, विश्व का मालिक है, वो किस में आया है, पुराने तन में आया है ना, तो ये बाबा पुराने झोपड़ी में रहेगा, पुराने मकान में रहेगा, नए मकान बच्चों के लिए है। बेगरी पार्ट थी, बेगरी पार्ट थी, सब लोग भोजन कर लेते थे, लास्ट में बाबा भोजन करते थे, कोई बच्चे को कमी न रह जाए। इतनी त्याग, नहीं तो जो मालिक होता है उसके लिए स्पेशल भोजन बनेगा, उसके लिए पहले ये हो जाएगा, टिफिन आएगा, टिफिन का रिवाज नहीं था, आज है। बाबा के दिनों में बाबा कभी टिफिन में भोजन नहीं किया, मंगाया नहीं, इतना त्याग। तो ये तो हम देखते हैं, हम सब भी त्याग किए हैं, कर रहे हैं, आप सबका भी त्याग कोई कम नहीं है, प्रवृत्ति में रह करके पवित्रता को अपनाया है। जो बड़े बड़े साधु संत ऋषि महर्षि नहीं कर पाए, जंगलों में जिसको करने के लिए वो चले गए, आज आप प्रवृत्ति में रह करके, परिवार में रह करके कर रहे हो, आप कोई कम महान नहीं हो, कम धनवान नहीं हो, कोई साधारण नहीं हो, आज 10 लाख रुपया किसी को दे दीजिए, किसी मॉल से आधा किलो पवित्रता लेकर के आ जाओ, मिलेगा? 500 ग्राम शांति लेकर के आ जाओ, 200 ग्राम चरित्र खरीद करके लेके आ जाओ, जिसका कोई कीमत नहीं है। वो बाबा ने हम बच्चों को दिया है, हम कितना धनवान है, कितना बड़ा है। हम भल लौकिक में दुनिया के हिसाब से साधारण है, साधारण फैमिली में हम हैं, साधारण ये है, लेकिन बाबा की नजरों में कौन है? बाबा ने किसको चुना है? दुनिया कहेगी कि ते तो साधारण माताओं को, भाइयों को, बहनों को चुना है। नहीं, जिन्होंने पवित्रता को समझ लिया वो आत्माएं बाबा के बन गई। नहीं तो बाबा का संदेश तो हम सबको दे रहे हैं, राजकोट में कोई बाकी है क्या? सबको दे रहे हैं ना, मिल ऑनर हो या छोटा हो, गरीब हो, सबको दे रहे हैं। लेकिन इतने लाखों में से कितने हुए बाबा के? गिने चुने। तो हम इतना महान हैं, क्यों महान बना? कभी हम कुछ अर्पण किए हैं। अब हम तन मन धन, मन बुद्धि संस्कार, जैसे बाबा ने सब कुछ अर्पण कर दिया, अपना नहीं चलाया। दादी मालिक बनी बाबा के जाने के बाद, लेकिन मालिक बनकर कभी ये नहीं कही कि मैं कहती हूं वही होगा, नहीं, दादी कहती है वो करिए, अच्छा लगता है तो। दादी की ये राय है तो समर्पणता, मतलब अपना कुछ नहीं, अपना संकल्प भी नहीं, अपना विचार भी नहीं। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो बाबा इस मैंपन को मिटाने के लिए मैं बड़ी हूं, मैं इंचार्ज हूं, तो बाबा ने क्या किया? छोटी छोटी कन्याओं को 7 दिन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना देता था। ये बहन, ये कन्या, ये जो कहेगी वही होगा। वो मम्मा को भी कहती थी, मम्मा सब्जी आज काटना है, चलिए, मम्मा उठ के चली जाती थी। मम्मा ये नहीं देखती थी छोटी सी कन्या मेरे को सब्जी काटने के लिए बोल रही है। इतना निर्माण था, त्याग माने निर्माण। मैंने बड़ी दादी को देखा, 2 मिनट उनके पास टाइम होगा, सबसे पहले किचन में आ जाएगी, सब्जी काटेगी। दोपहर को रोटी बनाने के लिए बोली दादी, कहेगी दादी आज पार्टी नहीं है घर में, तो रोटी बनाने के लिए कुछ बहनों की जरूरत है। दादी पहले चली जाती थी, लोगों को पता लगता था दादी रोटी बना रही है, सब भाग करके आते थे। इतना निर्माण था, हॉल बन रहा था, इकोनॉमी की बात थी, इतने मजदूर नहीं थे। दादी हम लोगों के साथ शाम को मजदूर चले जाते थे, पत्थर उठाने के लिए दादी जाती थी। सोचो, बाबा मम्मा, उन दिनों में एक ही बार खरीदारी होती थी, शांति स्तंभ में दाल साफ करना है, चावल साफ करना है, गेहूं करना है, मम्मा बाबा सब इकट्ठे होकर के, परिवार बड़ा नहीं है। अगर इतना निर्माणता हम सब में आ जाए तो हम अपने परिवार के लिए महान नहीं होंगे, समाज के लिए महान नहीं होंगे। आज जो भी महान बना है, गांधी जी को लीजिए, कितना निर्माण बना, कितना छोटे से छोटे काम करके दिखाया। बाबा भी छोटे से छोटे काम, ये बाबा का बगीचा देख रहे हैं, आम का पेड़ देख रहे हैं, बाबा अपने हाथों से आम का पेड़ लगाया है जो आज हम लोग फल खा रहे हैं। ये आम का पेड़ सहारनपुर से आम आया था, वो गुठली बाबा ने अपने हाथों से लगाया। अंगूर का बेल बाबा अपने हाथों से लगाया, मतलब कि इतना महान उतना ही निर्माण। तो हम लोगों को भी महान हैं लेकिन निर्माण, बुद्धि का भी अहंकार नहीं, बुद्धि हम प्लानिंग बुद्धि हैं, हम जो प्लान बनाते हैं बहुत अच्छा होता है, हम कॉन्फ्रेंस करते हैं बहुत अच्छा होता है, कौन कर रहा है, करा कौन रहा है, मुझे अच्छी तरह याद है 70 में हमारे बेंगलोर के कुमारों की भट्टी हो रही थी। पहले बाबा सुबह आते थे, हिस्ट्री हॉल में बाबा 9 बजे आए थे, सब बेंगलोर के भाई बैठे थे, मैं भी, दादी ने कहा कि आप भी भट्टी में बैठो, मैं भी बैठा था। बाबा ने आकर के मुरली चलाया तो कुमारों में तो अहंकार होता ना, पढ़ा लिखा हूं मैं, बड़े पोस्ट पर हूं, ये बहने तो छोटी है, इनको क्या नॉलेज है, इनको क्या है, तो रिगार्ड नहीं देते थे। तो बाबा को पता था, बाबा ने कहा आप पढ़े लिखे हो, बहुत पोस्ट, ऊंचे पोस्ट पर हो, लेकिन इनको किसने निमित्त बनाया है, सोचो। बाबा ने किसी इंजीनियर को, किसी मिनिस्टर को, कोई साइंटिस्ट को सेंटर इंचार्ज नहीं बनाया है, सेंटर पर नहीं रखा है, रखा किसको है, साधारण सिंपल थोड़ी पड़ी हुई हमारी बहन है। तो उनकी जवाबदारी किसके ऊपर, जो रखा है उसके ऊपर। आज आपका फैक्ट्री है, आपका दुकान है, आप 4 नौकर रखे हैं, वो कुछ भी गलती करेगा उसकी जवाबदारी किसकी होगी, मालिक होगी ना, उसकी तो नहीं होगी। तो बाबा ने कहा कि इन बहनों को किसने रखा है, बाबा ने रखा है ना। अगर मान लो जो किसी कारण से कैसे भी भूल हो जाती है, कोई काम नहीं अच्छा हुआ, तो जवाबदारी कौन, आप हो या बाप है, सारे कुमार पानी पानी हो गए, वहीं अहम चला गया, नहीं हम नहीं, बाबा है। तो बाबा ने ऐसे ऐसे युक्ति रच करके, ऐसे ऐसे ज्ञान दे करके हम लोगों को अहम को मिटाया। करने वाला कौन, कराने वाला कौन, हम बहुत लकी हैं जो भगवान की सेवा में लग गए, हम बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, हमारा भाग्य है कि यज्ञ सेवा में मेरा उंगली लग रहा है। लोग मंदिरों की सेवा करके अपना भाग्य धन्य धन्य समझते हैं, गुरुद्वारे में बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर लोग जाकर के चप्पल साफ करते हैं, जूते साफ करते हैं, गुरुद्वारे की सेवा करते हैं, अपना भाग्य समझते हैं। नहीं देखा होगा तो पेपर में पढ़ा होगा, चीफ मिनिस्टर जाकर के सफाई कर रहा है। आज हम किसके कहां कर रहे हैं, कहां बैठे हैं, रुद्र यज्ञ में बैठे हैं, किसका है, शिव बाबा का है, ब्रह्मा बाबा। इतना निर्माण कभी भी नहीं कहा कि, हालांकि बिजनेस में 93 इयर्स व्यक्ति ऐसे ही निकालता है, कितना अनुभव होगा, लेकिन अपना अनुभव का जरा भी अभिमान नहीं, नहीं, ये जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ करा रहा है, शिव बाबा करा रहा, ब्रह्मा का इसमें कोई रोल नहीं है, हम भी आप लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, कितना निर्माण था, सोचे। तो समर्पण मैता मतलब कि निर्माण, संकल्प तक अपना नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, उसकी प्रेरणा से वो करा रहा है। मम्मा 1 में चली गई, क्या मम्मा की विशेषता थी, किस विशेषता पर वो मम्मा मम्मा बन गई, एक ही विशेषता, हुक्मी हुक्म चला रहा है। कभी भी अपना उन्होंने मन मत मिक्स नहीं किया, कभी नहीं सोचा कि नहीं इसका भाव तो ये होना चाहिए, यही भाव होगा। नहीं, जो बाबा कह रहा है वही राइट है, वही सत्य है, वही होना चाहिए, वही होगा। हम लोग तो कुछ, आज हमारी दादियां देखिए, चलो मम्मा को आपने नहीं देखा लेकिन मनमोहिनी दीदी को नहीं देखा, बड़ी दादी को कुछ लोगों ने देखा होगा, जानकी दादी को देख रहे हैं, गुलजार दादी को देख रहे हैं, कितना निर्माण सब कुछ होते हुए भी अपना शरीर का भी उनको ये नहीं है, श्वास नहीं आ रहा है। अभी हम जाएंगे, दादी थोड़ी रेस्ट में है, तबीयत आज ठीक नहीं है, शाम को देख रहे हैं क्लास करा रही है, थोड़ी तबीयत ठीक हुई, सेवा कुछ नहीं। नहीं तो थोड़ी तबीयत ठीक हो हम कहेंगे कि नहीं थोड़ा और रेस्ट कर ले, थोड़ा और ज्यादा तबीयत ठीक हो जाए। उनको थोड़ी तबीयत ठीक हुई, सेवा में लग गया। थोड़ी तबीयत ठीक हुई, 10 बार उन्होंने कहा होगा कि नहीं अब कहीं नहीं जाएंगे, मधुबन में ही रहेंगे, थोड़ी तबीयत ठीक हो गई, लंदन चली गई। आज भी उनका फोन आया था दोपहर को, निर्भय भाई के पास हम लोग भोजन कर रहे थे, इतना सेवा का समाचार सुना रही थी दादी कि उनके पास और कोई टाइम ही नहीं है, एक एक सेकेंड दूसरे कोई काम ही नहीं है। तो हम लोग भी इतनी सेवा करें, इतना हमारे मन में अपना कुछ न हो, इतना बाबा को याद करें। मम्मा बाबा ने यादगार बनाया है ना, मम्मा यादगार बनाई है ना, दादी यादगार बना करके गई है, हमारे पूर्वज यादगार बना के गए हैं ना, तो हम भी तो विश्व के पूर्वज हैं। हम कौन सा यादगार बना रहे हैं? बाबा ने थोड़े से 300 बच्चे थे, जो रूटीन बनाया, जो नियम बनाया, आज 10 लाख बच्चे हैं, उतना उसी नियम पर चल रहे हैं। 25-30 हजार शांतिवन में लोग आते हैं बाबा के दिन, 30 हजार हो जाते हैं, वही नियम चलता है। या दादी ने कुछ नियम चेंज किया कि नहीं, ये तो बाबा ने 300 बच्चों के लिए नियम बनाया है, अभी 30 हजार बच्चे हैं, इनके लिए थोड़े नियम चेंज कर दें? कोई नियम चेंज नहीं, वही चल रहा है, वही सब कुछ हो रहा है। तो हम लोग भी अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों को इतना सॉफ्ट हो करके, इतना सॉफ्ट रीति से, जैसे एक छोटी कन्या दादी को ऑर्डर दे रही है कि दादी आपको रोटी बनाना है, वो दादी उठ करके चली गई रोटी बनाने के लिए, जरा भी नहीं सोचा कि कल की बालकी मेरे को क्या दे कह रही है। अगर मान लीजिए मेरी बहू मेरे को कुछ कह दिया तो अभिमान आने की बात है, सोचो कितना हमारे में निर्माणता है, वहां पता लगता है, वहां पता लगता है हम कितना ज्ञानी हैं। संकल्प तक आया नहीं, संकल्प तक भी न हो कैसे नहीं होगा, हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, इस शरीर के भान से परे रहेंगे। एक बार रमेश भाई, निर्भय भाई मम्मा को कहीं ले जा रहे थे गाड़ी में, रमेश भाई अपनी गाड़ी चला रहे थे, मम्मा आगे बैठी थी, निर्भय भाई पीछे बैठे थे। रास्ते में अब जाते हैं तो बहुत सारे साइन बोर्ड दिखाई देते हैं, तो कोई एक साइन बोर्ड ज्ञान के आधार पर वो अच्छा था, तो रमेश भाई थोड़े दूर आगे बढ़ गए, गाड़ी लेकर चले गए, फिर उन्होंने मम्मा से पूछा कि मम्मा वो आप साइन बोर्ड देखा जो लेफ्ट साइड में लगा था अभी अभी जो हम क्रॉस किए हैं, तो मम्मा क्या जवाब देती है कि मम्मा शरीर में तब आती है जब कुछ सेवा होता है तो, नहीं तो बाबा के पास रहती है। सोच लो, मम्मा शरीर में तब आती है जब सेवा होता है। अगर सचमुच हम लोग भी ये अभ्यास कर लें, मामा कहते ये पर्सनल पुरुषार्थ था, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कई बार अव्यक्त मुरलियों में कहा है, साकार मुरलियों में कहा है कि जैसे बाबा सेवा अर्थ शरीर में आता है, सेवा करके चला जाता है, तो आप बच्चे भी ये अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करो, परम धाम में रहें, सेवा अर्थ इस शरीर में आए, फिर सेवा पूरा करके हम बुद्धि को परम धाम में ले जाएं। अगर ये स्टेज हमारी हो जाए तो क्या होगा? कोई फीलिंग आएगी? कोई छोटा कहा, बड़ा कहा, कुछ कहा? जी हजूर, जो कहिए हाजिर है। देह भान में आते हैं, बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं तो फीलिंग होती है। ये छोटी होकर के मेरे को राय दे रही है। बाबा छोटे बच्चों से राय लेते थे। बाबा कई बार कहा, बड़े तो बड़े, छोटे सुभा नल्ला। बाबा ने कहा है ना, बाबा छोटों की बात मानी ना, हम लोग उनको डांट देंगे, तुमको क्या है नॉलेज है क्या है। तो ये है, तो जितना जितना हमारी बुद्धि बाबा में लगी रहेगी, जितना जितना हम बाबा की याद में खोए रहेंगे, जितना जितना प्राप्ति सामने होगी, उतना बेहद का बैराग होगा। लौकिक दुनिया में, पुरानी दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि हमारी नहीं लगेगी। आप अच्छी भट्टियां कर रहे हो, अच्छी क्लासेज कर रहे हो, अच्छे वातावरण में तपस्या कर रहे हो, घर जाओगे, घर में रहते हुए बुद्धि कहां रहेगी? मधुबन में बुद्धि रहेगी। हर घड़ी मधुबन खींचता रहेगा, हम वहां ऐसे थे, ऐसे तपस्या कर रहे थे, इस समय ये हमारी रूटीन था, ये रूटीन था, थोड़े दिन जाकर के, 8 दिन 10 दिन जाकर के भूल जाएंगे, फिर नॉर्मल लाइफ हो जाएगा। प्रैक्टिकल तो उसी तरह हमारी बुद्धि परम धाम में रहने का अभ्यास हम करें तो हम अशरीरी नहीं बनेंगे। अशरीरी बने, बाबा की बातें हमारे साथ रही तो फिर क्या होगा? हमारा प्रभाव औरों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? रिश्तेदारों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आज हम सुना है, देखा है, बड़े बड़े साधु, पहले के, आज के साधु संत को नहीं बात कर रहा हूं, पहले के, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं थी, वो जंगलों में हट से तपस्या करने के लिए बैठ जाते थे, घंटों बैठ जाते थे, नहीं मुझे तपस्या करके भगवान के दर्शन करना ही है, भगवान को पाना ही है, मुझे साक्षात्कार करना ही है, इतनी हट से तपस्या करते थे कि हिंसक प्राणी अपने हिंसा को भूल करके उनके पास आकर के शेर चीते बैठ जाते थे। जब वो अपने हट से, अपनी तपस्या से जानवरों को, प्रवृत्ति को चेंज कर सकता है, तो हम बाबा के बच्चे, हमारे साथ बाबा है, हमारे अंग संग बाबा है, हम बाबा के अंगली पकड़ करके चल रहे हैं, क्या हम तपस्या करेंगे तो हम अपने रिश्तेदारों को, वृत्ति को चेंज नहीं करेंगे? सोचो, एक सन्यासी जिसने भगवान को नहीं जाना, अपने हठ, अपने तपस्या करके जिद से हिंसक प्राणी को चेंज कर दिया, हम भगवान के उंगली पकड़ के चल रहे हैं, भगवान के छत्र छाया में चल रहे हैं, आंख खुलते आंख बंद होते भगवान के सामने, आंख खुलता है तो गुड मॉर्निंग बाबा से करते हैं, आंख बंद होता है तो गुड नाइट बाबा से करते हैं। हम करें या न करें, बाबा हमको गुड मॉर्निंग करने के लिए आता है। वो बच्चे अगर तपस्या करें तो लोगों को वृत्ति को चेंज नहीं करेंगे, सोचो। अगर नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि हम तपस्या नहीं कर रहे हैं। हम दिखाने के लिए लाल लाइट में बैठे हैं, बुद्धि बाहर भटक रही है, बुद्धि सेवा में भटक रही है, बुद्धि और बातों में भटक रही है। रियल तपस्या तो वो है कि हम तपस्या करें, हमारे पड़ोस में जो बैठे हैं उनकी बुद्धि अगर भटक रही है तो उनका भी बुद्धि लग जाए। आज हम प्रैक्टिकल देखते हैं, गुलजार दादी होती है, जानकी दादी होती है, कभी वो क्लास में गुलजार दादी शाम को योग कराने नहीं जाती है, जानकी दादी तो जाती है। हम गुलजार दादी को देखते हैं, उनके कॉटेज में जाते हैं शाम के टाइम में 7 बजे, पक्का दादी कितना भी बिजी रहेगी तपस्या में बैठ जाएगी, हॉल उनका है। वहां जाते हम लोग भी शरीर के भान भूल जाते हैं, इतनी पावरफुल वहां उनका वातावरण है। हम दादी को बोलते हैं, दादी आपके पास हम जब भी आते हैं तो अभी मुरली पढ़ती हो, कोई पेपर नहीं पढ़ती हो, कोई बाहर के समाचार नहीं सुनती हो, कोई टीवी नहीं देखती हो, हम कभी देखा नहीं है, क्यों आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको दिल नहीं करता है? नहीं भाई, बाबा ने कहा है ना योगी जीवन बनाना है। हम बोला कि दादी आपको देख करके हमको योगी जीवन की प्रेरणा आ जाती है, योगी जीवन हो जाता है। आपके पास हम शाम को योग करने हम थोड़े भाई आते हैं तो शरीर का भान भूल जाता है, आपको क्या जरूरत है? दादी बोलते नहीं नहीं, योगी जीवन बनाना है। अब सोचो, जिनको देखने से, जिनको मिलने से योगी जीवन हो जाता है, वो योगी जीवन बनाने के लिए धुन में लगे हुए हैं। कितनी तपस्या है, कितना उनका ये है परफेक्ट बनने के लिए। वो आत्माएं आज हमारे पास, हमारे सामने परफेक्ट हैं, केवल हमको संभालने के लिए, यज्ञ को संभालने के लिए बाबा ने इन आत्माओं को, इन मूर्तियों को रखा है। नहीं तो जानकी दादी क्लास में बोलती है, पता नहीं बाबा मुझे क्यों रखा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बाबा मेरे को रखा है। आज से 15 साल पहले जब लोटस हमारा नहीं बना था, सुख शांति भवन था, पुराना सुख शांति, अभी तो नया बन गया है, उसमें दादी इतनी बीमार हुई, दादी ने बोला कि अब हम बाबा के पास जाएंगे, रुमाल तक भी अपना सब कुछ लोगों को दे दिया, ये ले जाओ, अब मैं जा रही हूं। आज वो दादी लंदन में सेवा कर रही है, सोचो। बाबा कहते थे कि बाबा के पास बच्चे आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, बच्चे अशरीरी हो जाते हैं। मुरली की बात सुना रहा हूं। समय आएगा बाबा के नजदीक बच्चे आएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। अंत के समय इतना बाबा ने तपस्या किया कि जो बच्चे नजदीक आते थे, पार्टियां नजदीक आती थी और अशरीरी हो जाती थी। सबका यही अनुभव होता था, बाबा से जाएंगे तो ये प्रश्न पूछेंगे, ये प्रश्न पूछेंगे, ये हमारी प्रवृत्ति की जवाबदारी है, ये प्रॉब्लम है हम पूछेंगे, और बाबा के नजदीक आते सब प्रश्न समाप्त। अगर सचमुच हम लोग वैसी तपस्या करें, बाबा तो बुजुर्ग थे, 93 एज था, कई तकलीफ थी, फिर भी तपस्या, रात रात जाग करके। एक भाई सुनाता है कि हम 2 बजे पहरा दे रहे थे, बाबा के खिड़की के पास खड़े हुए, तो बाबा पूछता है, बच्चे कुछ चाहिए क्या? वो तो ऐसा ही देखने गया कि बाबा की खिड़की से जा रहा था, तो 1 मिनट खड़ा हो गया। इतना बाबा को ये वाइब्रेशन आया, कोई आके खड़ा है, बच्चे कुछ चाहिए? नहीं बाबा, मैं पहरा दे रहा हूं। बाबा ने कहा कि जो 200 को पहरा दे रहा है, बच्चे उसकी क्या पहरा दोगे? तो अगर कोई तपस्या तो उसको कहते हैं ना, फॉलो तो हम उसको करें ना। तो कोई पेपर आ गया, कोई बात हो गई, मान लीजिए तबीयत खराब हो गया, हम 1 सेकंड में ये हो जाते हैं कि हमको कितना हिसाब देना पड़ेगा। बाबा के बनी है तब से मैं हिसाब ही देते आई हूं, फट से आदमी घबरा जाता है। हम दादियों को देखा, दीदी को देखा, इतनी उम्र थी, घुटनों से चला नहीं जाता था, घुटनों की प्रॉब्लम थी, लच्छू दादी को उंगली पकड़ करके चलती थी, लेकिन हम रात को जाते थे दीदी का बीपी चेक करने, तो हम कहते दीदी आज आपका बीपी हाई है, सुबह योग में नहीं आना, सुबह जल्दी उठना नहीं। दीदी क्या जवाब देती है? नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, सुबह जो बाबा प्रेरणा देगा वो करूंगी, अभी से बाबा को नहीं कहूंगी कि बाबा हमारी बीपी हाई है, मैं सुबह नहीं आऊंगी योग में। नहीं, सुबह जो बाबा प्रेरणा देगा वो करूंगी। और देखते थे दीदी हमारे से पहले हिस्ट्री हॉल में जाकर के योग कर रही। इन आत्माओं की क्या हम बातें सुनाएं? इतनी इनमें त्याग, इतनी तपस्या, इतनी समर्पण मयता। दीदी इतनी बड़ी फैमिली की, जसलोक हॉस्पिटल बना है ना, उनका अंकल का हॉस्पिटल है, वो सारे पैसा लेकर के बाबा के पास आए, बाबा हमको खाली साक्षात्कार करा दो, ये पैसा यज्ञ में, बाबा के यज्ञ में लगा दो। बाबा ने कहा कि पैसे से साक्षात्कार नहीं होता है, बच्चे ये पैसा ले जाकर कोई सोशल हॉस्पिटल बना दो, कोई सोशल काम करो, बाबा कोई पैसा नहीं चाहिए। नहीं तो उस समय बेगरी पार्ट था, बाबा को लालच आता कि भाई चलो इतना पैसा है, थोड़ा यज्ञ और थोड़ा यज्ञ का ये चल जाए। नहीं, इतना वैराग्य वृत्ति। एक रियल घटना आपको सुनाऊं कि थोड़े दिन पहले, 1-2 महीना पहले ईशु दादी बीमार हुई, मैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल में ले गया, दादी को चेक करके सब डॉक्टर चले गए, दादी बैठी थी, 2-4 बहने बैठी थी, मैं बैठा था। हमने कहा कि दादी एक कोई ऐसी यज्ञ की बात सुनाओ जो हमने नहीं सुना हो। तो दादी मुस्कुराने लगी कि इतना पुराना है, सब कुछ जानता, अभी क्या मैं इसको सुनाऊं? तो दादी बोली कि एक बात सुनाती हूं, निश्चय की। देखो निश्चय कितना बाबा पेपर लेता है। दादी ने कहा कि बेगरी पार्ट थी, भोजन के लिए ब्रह्मा भोजन क्या बनेगा ऐसा नहीं था। उन दिनों में 4 बहनों को डायरिया हो गया, जिसमें यीशु दादी एक थी, सील दादी थी और 2 बहनें थी, बड़ी बहनों को 4 को डायरिया हो गया। विश्व किशोर दादा यज्ञ का मैनेजर थे, उन्होंने देखा, दया आई कि अरे इन बड़ी बहनों को डायरिया हो गया, सुबह से परेशान नहा रही है, तो कभी जेब में हाथ लगाए कि कुछ पैसा निकल जाए, कोई पैसा नहीं। सोचा कि शायद अलमारी में भूल से कहीं रख दिया हो कपड़े के नीचे, चलो देखूं अलमारी। अलमारी में गया, देखा तो चार तांबे का बड़ी पैसा मिला, एक आना, चार पैसे का एक आना होता था उन दिनों में। वो एक आना लेकर के मार्केट गया, एक डायरिया की एक गोली मिली, लेके आ गया। अब सोचा कि मैं किसको दूं, चार बहने सब एक से एक बड़ी है, मैं किसको एक गोली दूं। ये इसी सोच में दादा थे, उतने देर में बाबा वहां से क्रॉस किए। बच्चे क्या सोच रहे हो, कुछ सोच जरूर रहे हो, तुम्हारे फेस से लगता है। हाँ बाबा, ये चार बहनों को डायरिया है, मेरे को देखा नहीं गया, मैं पैसा ढूंढा नहीं मिला, अलमारी ढूंढा तो उसमें चार वो तांबे का पैसा था एक आना, मैं ये गोली लेकर आया, ये गोली मिला, मैं किसको दूं। बाबा कहा, बस इतना ही, ये छोटी सी बात में तुमको चिंता है, लाओ मेरे को दो। बाबा कितना बड़ा दिल, लाओ मेरे को दो। बाबा ने उससे दादा से गोली एक ले लिया, बोला कि एक चाकू ले आओ बच्चे, उसको चार टुकड़ा कर दिया और बोला कि एक गिलास पानी लाओ, एक एक टुकड़ा 1/4 मुंह में खिला दिया, पानी पिला दिया, डायरिया ठीक हो गया। निश्चय वो देख करके कई लोग यज्ञ से जो बाबा के साथ थे वो चले गए कि भोजन नहीं मिल रहा है, कुछ बीमारी हो गई तो दवाई नहीं होगा, कल क्या होगा, चले गए। जो निश्चय बुद्धि थे, आज वो देखो उनकी पूजा हो रही है। तो कहने का भाव है कि कुछ प्राप्ति होती है तो कुछ पेपर भी देना होता है। आज बच्चा आगे जाता है, क्लास चेंज करता है, तो पेपर दे के क्लास चेंज करता है। तो हम लोगों को प्रवृत्ति में कुछ पेपर आ गया तो घबराने की बात नहीं है, पेपर आया है खुशी मनाने की बात है कि कल हमारी प्रमोशन होने वाली है, मैं आगे जाने वाला हूं इसलिए पेपर आया है। थैंक्स, उनको थैंक्स दो, पेपर को, पेपर लेने वालों को थैंक्स दो, अरे भाई पहले आते तो मेरी स्थिति और अच्छी बन जाती। ऐसा होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, दुखी हो जाते हैं, बीमार हो गए दुखी हो जाते हैं। बाबा ने मुरली में कहा है, मैं सुप्रीम सर्जन हूं, मैं आया हूं सारे विश्व को सर्जरी करने के लिए। सकार मुरली में सुना है आप लोगों ने या मैं खाली सुना है, सब सुना है ना, सुप्रीम सर्जन आया है विश्व को सर्जरी करने के लिए। मान लो जी मैं बीमार हो गया, मान लो जी आप सर्जन हो, कल सर्जरी 10 केस आपको सुबह से शाम तक 10 सर्जरी करना है, नंबर सीक्वेंस लगा दिया है, नंबर लग गई है थिएटर में, नंबर लग गया है कि साहब को 10 सर्जरी करना है। अचानक आपका बच्चा रात को बीमार हो जाता है तो पहला ट्रीटमेंट किसको करेंगे, जो लिस्ट में है उनका करेंगे या पहले बच्चे को करेंगे? पहले बच्चे को करेंगे ना, माताएं बोलो, पहले बच्चों को करेंगे ना। तो क्या शिव बाबा जो सुप्रीम सर्जन है, जो विश्व को सर्जरी करने के लिए आया है, क्या अगर उसका बच्चा बीमार है, हम बीमार हैं, तो पहले हमारे को ध्यान नहीं देगा? देगा ना पक्का, लेकिन कब देगा? आज हम बीमार पड़ते हैं तो पड़ोसी को कह देते हैं, रिश्तेदारों को कह देते हैं, नहीं मेरे को बुखार है, जुकाम है, मेरे को उठाना नहीं, मैं रेस्ट करूंगा, कहते हैं ना, हम सुबह नहीं उठेंगे, सुप्रीम सर्जन आ करके देख करके चला जाएगा, ये बच्चा तो सोया है, इसको सोने दो, दवाई कब मिलेगी? आज हम देखते हैं दादियां कितना भी बीमार, जानकी दादी कितना भी बीमार, उसको ये 8 रिब्स टूटे हुए थे, हरिद्वार गई थी, संतों ने बोला कि दादी यहां कॉन्फ्रेंस करते हो, हर साल हम आते हैं आपके यहां, इस बार हरिद्वार में हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको आना है। दादी क्या कहे, हाँ जरूर आऊंगी, गई उनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, उनको अच्छा सबको बहलाया, भाषण किया, रात को सेंटर पर सोई, बुजुर्ग हैं, रात को उठे, गिर गए, 8 रिब्स टूट गया। दादी ने बोला तो हम लोगों को खबर मिली, तो उनको चार्टर्ड फ्लाइट से अहमदाबाद लाए, सारी चेकिंग हो गया, रात को 10 बज गया, चेकिंग पूछती है कि हमारी चेकिंग हो गई, क्या निकला, 8 रिब्स टूटा है, बस 8 ही रिब्स टूटा है ना, बोलती है पेन हो रहा है बस, डॉक्टर ने क्या बोला, आ तो दवाई खाना है, यहाँ रेस्ट हॉस्पिटल में करना है, सर्जरी करना है कल, सर्जरी इसका होता नहीं है, प्लास्टर लगता नहीं है, रेस्ट करना है। बोली कि नहीं अभी ले चलो, बाबा के घर में बच्चे आए हैं, मैं हॉस्पिटल में रहूंगी तो वो कहेंगे कि दादी हॉस्पिटल में है, वहां रहूंगी तो दादी शांतिवन में है। उनका जीवन अपने लिए नहीं है, सेवा के लिए है, सुनाने का मेरा भाव ये, इतनी सेवा का। तो नंबर वन कौन जाएगा बोलो, सेवा जो किया दादी जाएगी ना, दादी नंबर वन में है ना, ऐसे बाबा ने नंबर वन बना दिया क्या, उनकी त्याग। तो उसी तरह अगर हम बच्चे त्याग करेंगे नंबर वन में जाएंगे। हम जितना बाबा को समर्पण करते हैं मन बुद्धि संकल्प से भी नहीं, कोई संकल्प नहीं हुआ कान पकड़ना नहीं, ये बाबा का संकल्प नहीं है। बाबा के डायरी आप पढ़े होंगे, बाबा के जीवन पढ़े होंगे, मंत्रियों को बुलाता था, कौन से उनके मंत्री थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब मंत्री थे, और उनको कचहरी करता था। तो उसी तरह हम लोगों को भी कुछ भी हो रहा है तो घबराना नहीं है, अरे भगवान के हाथ में जीवन दिया है, भगवान के हम बने हैं, तो हमारा क्या होगा भगवान समझेगा, हमको क्या करना है, हमको तो अच्छा हुआ हमारी प्रमोशन होने वाली है, तो प्रमोशन हो तो खुशी होना चाहिए ना, या चिंता होना चाहिए, या दुखी होना चाहिए, या मन ये होना चाहिए, कुछ पेपर आया मतलब हमारी प्रमोशन होने वाली है, हम आगे बढ़ने वाले हैं इसलिए पेपर आया है, खुशी मनानी चाहिए, लोग देखें। एक बात दादी का सुना करके, दादी का दिन है, एक ही बात सुनाएंगे, 2 मिनट और लेते हैं। बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी बीमार थी, वेंटिलेटर पर थी, मैं बॉम्बे में दादी के पास था, कोई आके कहता था बॉम्बे हॉस्पिटल में एक बड़ा डॉक्टर है उसको ले आएंगे तो शायद दादी जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं फटाफट गाड़ी लेकर चला जाता था, और बॉम्बे अंधेरी से बॉम्बे जाने में 1.5 घंटा लगता है, इतनी ट्रैफिक, अब 1.5 घंटा उसके गाड़ी में हम दोनों गाड़ी में बैठे हैं, उसको क्या करूं, दादी के बारे में सुनाता था, दादी ये है और इतने दिन से वेंटिलेटर पर है, 1 महीना से वेंटिलेटर पर है, वो सुनता था, जब आता था दादी को देखता था तो कभी दादी को देखता था कभी मेरे को देखता था, बोलता था कि इतनी अच्छी बातें सुनाता था लेकिन सारा झूठ बोला है, 1 महीना वेंटिलेटर पर जो रहेगा उसका चेहरा इतना चमकेगा नहीं, जब वो पेपर पढ़ता था तो उसको विश्वास होता था, दादी के हिस्ट्री जब देखता था, फाइल देखता था, तो उसको विश्वास होता था कि दादी सचमुच 1 महीना से वेंटिलेटर पर है। इतना हमारी इतनी तपस्या हो, हमारी चेहरा सेवा करे। दादी जानकी हंसा को पूछती है, मैं सोती हूं तो मेरा फेस कैसा होता है, योगी वाला फेस होता है या कोई और फेस होता है, उसको इतना चिंता लगी है, सोचो ये है तपस्या, हर सेकेंड हर पल सेवा सेवा, बाबा बाबा बाबा। देखो हम संपन्न नंबर वन में आ जाएंगे। ओम शांति, थैंक यू।
अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ मिला, क्या मिला, बहुत कुछ मिला है ना? ये जो बातें हैं ना, ये आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेंगी, नहीं, ये जो कहानियां हैं ना, जो जीवन की प्रैक्टिकल बातें हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, वो ऐसी ही भट्टियों में और ऐसी ही गैदरिंग में, ऐसे ही मौके पर, ऐसे ही स्थानों पर मिलेंगी। इसलिए ये हमारे जीवन के खजाने हैं। विषय था ना समर्पण मयता से संपन्नता, तो इन बातों से जब हम संपन्न बनते जाएंगे ना, तो वो संपन्नता भी आ जाएगी। तो इसलिए आप सबकी तरफ से, हमारी तरफ से भाई जी को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत। तो मिनट योग करेंगे और उसके पश्चात आप सभी का, जैसे आज का लास्ट शेड्यूल है बाबा के कमरे में और शांति स्तंभ में जाकर के आप बाबा को अपना चार्ट आज का सुना देना, और फिर कमरों में जाकर के आप रेस्ट करेंगे, तो उससे पहले अपना चार्ट नोट डाउन करना। ओम शांति। और कल का जो दिन है वो है सफलता दिवस, ये स्मृति में रखना है।